ओम शांति। परम पिता परमात्मा ने जब स्वर्णिम संसार हेतु अपने प्यारे ब्रह्मा वत्सों को सजाया तो उन्होंने एक एक लवलीन बच्चे को विशिष्ट प्रकाश से संरक्षित करके यज्ञ निमित्त तैयार किया। ये सभी ब्रह्मा वत्स अपनी भरपूर विशेषताओं से परिपूर्ण है। ऐसी ही विशेषता संपन्न आत्म ज्योति की विशेष चमक से भरे अथक सेवाधारी आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी हम सबके समक्ष हैं। हम सभी सहृदय भ्राता जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी ब्रह्मावस जब बाबा से मधुर मिलन मनाकर अपने लौकिक स्थान पर वापस जाते हैं तो हम सभी के पास बाप दादा की याद प्यार के अलावा क्या साथ होता है? टोली। तो मीठे बाबा की मीठी टोली जितने गुणों के भंडार बाबा ने भ्राता जी के भरे हैं उतने ही मीठी टोली भ्राता जी आप तक पहुंचाते हैं। सन 1972 में ज्ञान स्नान कर बाबा के दिल तख्त पर स्थान बनाया और सन 1976 में भगवान को सर्वस्व सौंप कर अनवरत बृहत सेवाओं में अपना अथक सहयोग करके देश विदेश में नाम बाला किया है। वर्तमान में आप यूथ विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम सभी आपके अमृत वचनों का श्रवण करेंगे। आज का विषय है फॉलो फादर, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा, जैसे जैसे जनवरी मास हमारे सामने आता है ब्रह्मा बाबा प्यारे हमारे सामने बार बार दिखाई देते हैं और दिल कहते हैं कि मैं प्यारे ब्रह्मा बाप समान बनूं, क्योंकि ज्ञान के सागर शिव बाबा ने जो सत्य ज्ञान दिया है उस सत्य ज्ञान के प्रतिमूर्ति सबसे पहले प्यारे ब्रह्मा बाबा बने। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल हैं। जब हम मधुबन में जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा हमें शांति स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं। अभी भी बाबा शांति स्तंभ के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़े हैं, ऐसा अनुभव होता है। शांति स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति बाबा ने अपनी बनाई थी, लाखों करोड़ों आत्माओं को प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति बनाई थी। और स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति बाबा ने बनाई थी। तो शांति स्तंभ पर चार बातों का जिक्र किया जाता है। शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, ज्ञान के स्तंभ और पवित्रता के स्तंभ। शांति स्तंभ अर्थात ब्रह्मा बाबा ने शांति के सागर शिव बाबा से अथाह शांति ग्रहण की प्राप्त की और सारे संसार की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए मास्टर शांति के सागर बन गए। शक्ति स्तंभ अर्थात इस माया की दुनिया में माया पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्माओं को बाबा ने शक्ति प्रदान की। जैसे बाबा शक्ति के सागर बन चुके थे, ज्ञान के स्तंभ अर्थात ज्ञान के सागर को ही अपने में समा लिया था ब्रह्मा बाबा ने और सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान रत्नों के अमूल्य धन से साहूकार बनाते गए और मास्टर ज्ञान के सागर बन गए और पवित्रता के स्तंभ की तो बात ही निराली है। पवित्रता को ब्रह्मचर्य शब्द से पुकारते हैं। ये ब्रह्मचर्य शब्द कहां से आया है? ब्रह्मा के नाम से ब्रह्मचर्य का शब्द उत्पन्न हुआ है। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने सारे संसार में सबसे ऊंची पवित्रता की स्थिति प्राप्त की थी, जहां कोई भी धर्मात्मा पुण्यात्मा महान आत्मा छू तक नहीं सकी। इतनी पवित्रता की स्थिति बाबा ने बनाई थी, इसलिए उनके नाम से पवित्रता को ब्रह्मचर्य के नाम से पुकारते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए हमें बाबा के कुछ विशेषताएं, कुछ कलाएं, कुछ गुण हमारे सामने रखना जरूरी है। वैसे तो ब्रह्मा बाबा की जीवन ही खुली किताब की तरह हमारे सामने है, केवल हमें कॉपी करना है। दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसमें कॉपी करना मना होता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में कॉपी करने के लिए खुली छुट्टी दिए हैं। बल्कि जो बहुत अच्छी तरह से कॉपी करते हैं उनको एक्स्ट्रा बक्सिस भी दिया जाता है। इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बनना है। मैं प्रकाश मणि दादी जी को जब भी मिलता था तो दादी जी को कहता था कि दादी जी, आप तो ब्रह्मा बाबा की कार्बन कॉपी बन चुकी है, फोटो कॉपी बन चुकी है। ब्रह्मा बाबा की कमी आपने महसूस होने ही नहीं दी। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी सारे यज्ञ को अच्छी तरह से चलाती रही, बढ़ाती रही और ब्रह्मा बाबा की साकार रूप में महसूसता भी कराती रही। तो हम बाबा के कुछ विशेषताएं विस्तृत रूप में आपके सामने रखना चाहेंगे, ताकि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना बहुत सहज होगा। हम कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है, शिव बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन प्यार की निशानी क्या है? ब्रह्मा बाबा के मुख से हमारा जन्म हुआ है। शिव बाबा ने उनके मुख वंशावली के द्वारा ब्राह्मण जन्म हमें दिया है, तो शिव बाबा से प्यार हमारा है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाबा के समान निराकारी स्थिति में सदा रहना, निराकारी दृष्टि सदा रखना, और ब्रह्मा बाबा से हमारा प्यार है उसकी क्या निशानी है? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना और कराना, ये उसकी निशानी है। तो सबसे पहली बाबा की विशेषता थी, बाबा सभी के बेहद के पिता थे। जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा नाम से पुकारा और उनके द्वारा लाखों आत्माओं को उनके मुख से अलौकिक जन्म दिया, तब से बाबा का प्यार हर बच्चे के प्रति बहुत बढ़ता गया। हर बच्चे के प्रति बाबा के दिल में सदा कल्याण की भावना पनपती थी। बाबा बच्चों का हर तरह से ध्यान देते थे। यज्ञ में जब भी बच्चे आते थे, बहुत अच्छी पालना अपने बच्चे के समान देते थे। तो हमें भी यही सीखना है कि सभी आत्माओं के प्रति हमारे दिल में कल्याण की भावना पनपती रहे। हमारे से कोई कैसा भी व्यवहार करें, अपशब्द भी कोई हमें बोले, हमारा कोई अपमान भी करें, फिर भी हमें कल्याण की भावना उन आत्माओं के प्रति सदा रखना है। ये धारणा हमें ब्रह्मा बाबा से सीखनी है। दूसरी विशेषता, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि सभी के लिए सदा महान दृष्टि रहती थी। चाहे कोई बच्चा गरीब है, साधारण है, योग्य है या अयोग्य है, शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, सबके प्रति बाबा की दृष्टि महान थी, ऊंची थी। बाबा यही सोचते थे, भगवान के जिस पर नजर पड़ी है जरूर वो महान आत्माएं हैं, उनसे बढ़कर और इस दुनिया में और कौन महान हो सकता है। तो ब्रह्मा बाबा सभी बच्चों के प्रति महानता की दृष्टि रखते थे, कभी भी किसी को नीचे दृष्टि से नहीं देखा है, और बहुत अच्छी तरह से सबको प्यार करते रहे और महिमा करते रहे, सम्मान की दृष्टि से देखते रहे। कई बार हमें महसूस होता है कि बाबा हमें इतनी ऊंची नजर से देखते हैं, हम अपने को साधारण नजर से क्यों देखते हैं? एक बार शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का डायलॉग चल रहा था सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा कहते थे कि ब्रह्मा बाबा, मुझे आपके बच्चों को देखकर कभी कभी हंसी आती है, मैं उनको बहुत ऊंची नजर से देखता हूं, पता नहीं वो अपने को क्यों साधारण समझते हैं। भाई ब्रह्मा बाबा तो हमारी बाजू लेंगे ना, ब्रह्मा कुमार के नाते। तो बाबा कहते थे बाबा कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चों को नशा चढ़ेगा, वो स्वयं को महान समझते जाएंगे। सोचने की बात है, जितना ऊंची नजर से बाबा हमें देखते हैं उतना ऊंचा हम स्वयं को क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि सतयुग त्रेता युग में हमें बहुत ऊंचा प्रारब्ध मिलता है, ऊंचा स्टेटस मिलता है, लेकिन द्वापर युग में प्रवेश होते ही माया हमें किडनैप करती है और जेल में ठोक देती है 2500 सालों तक, जिसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी होती है। वो हीन भावना हमें अपनी महान स्थिति में स्थित होने नहीं देती है। इसलिए हमें सदा सतयुग त्रेता युग के ऊंचे पहाड़ को देखना है, द्वापर कलयुग के पहाड़ को नहीं देखना है। तीसरी विशेषता, ब्रह्मा बाबा के बोल सभी बच्चों के लिए वरदानी बोल होते थे। बाबा के बोल में सदा बल अनुभव होता था, बाबा के वाणी में सदा वीणा बजते थी और बाबा के वरदानी बोल सुनने के लिए बच्चे सदा लालायित रहते थे। बाबा के बोल अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह प्रदान करते थे और निराश आत्माओं के दिल में भी आशाओं के किरण उत्पन्न करते थे। तो कभी भी बाबा ने ऊंचा नीचा बोल किसी को नहीं बोला, इसलिए हमेशा बाबा के मुख से अमृत बरसता था, सुख वाणी अमृतमय वाणी सदा बाबा की होती थी, क्योंकि वो सारे सृष्टि के आदि पिता थे। तो आदि पिता सारे संसार के जो होंगे उनके बोल कितने मीठे होंगे, कितने सम्मानजनक होंगे, आप सोच सकते हैं, क्योंकि उनको जिम्मेदारी मिली है इस धरती पर आपको विशेष स्वर्ग स्थापन करने में अहम भूमिका निभानी है। तो बाबा ने वो भूमिका निभाई और सबके लिए सदा वरदानी बोल बोलते रहे, क्योंकि हम सभी पवित्र आत्माएं हैं। जैसे हम बोल बोलते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। अगर हम किसी के लिए कटु वचन बोलते हैं, ऊंचे नीचे बोल बोलते हैं, तो वो प्रैक्टिकल होने की संभावना हो सकती है। इसलिए कल्याणकारी बाप के हम सभी कल्याणकारी बच्चे हैं, तो सबका कल्याण होता रहे, सबका भला होता रहे, सब आगे बढ़ते रहे, सब फलते रहे, फूलते रहे। इसलिए हमारे बोल में बहुत मिठास होना जरूरी है, क्योंकि हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। किस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है ये बोल के द्वारा पता चलता है। मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे बोल से व्यक्तित्व की पहचान कैसी होती है। एक बार राजा सुबेदार और सिपाही अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए गए। राजा के घोड़े के पैर में घुंघरू बजे बंधे हुए थे, तो जैसे तीनों ने अपने घोड़े को झाड़ को डांग बांधा और वो जंगल में शिकार करने चले गए। जैसे शिकार करके वापस आते हैं, राजा का घोड़ा वहां से गायब हो गया था। तो राजा को चिंता लगी। राजा ने सिपाही को भेजा, जाओ जंगल में घोड़ा ढूंढ के आओ। तो वो जिस रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा था। तो उस अंधे व्यक्ति को वो सिपाही कहने लगा कि हे अंधे बाबा, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, कोई घुंघरू की आवाज तो नहीं आई। उसने कहा, नहीं भाई। तो सिपाही को वापस आने में देरी हो गई, तो राजा ने सूबेदार को भेजा। सूबेदार भी उसी रास्ते से जा रहा था जहां अंधा व्यक्ति बैठा था। तो सूबेदार ने कहा, बाबा जी, इस रास्ते से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरू की आवाज तो नहीं आई। उसने कहा, नहीं भाई। सूबेदार को वापस आने के लिए देरी हुई, तो राजा खुद घोड़ा ढूंढने के लिए गए। उसी रास्ते से गए जहां अंधा व्यक्ति बैठा था। तो राजा के मुख से निकला, महात्मा जी, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, कोई घुंघरू की आवाज तो नहीं आई। उसने कहा, नहीं राजन। तो राजा चौंक गया कि इसको दिखाई नहीं देता है व्यक्ति को, और इसने कैसे पहचाना मैं राजा हूं। तो उस व्यक्ति को पूछा, आपने मुझे कैसे पहचाना? तो उसने कहा, राजन, जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके बोल बड़े सम्मानजनक होते हैं। अभी अंधा व्यक्ति को बोलेंगे, अंधे बाबा के रूप में पुकारेंगे तो उनके दिल को चोट लगती है, लेकिन उसको इतनी ऊंची दृष्टि से देखकर, इतने ऊंचे बोल से उसको पुकारा, तो उसके दिल में वो प्यार जागृत हो गया और उसने उस व्यक्तित्व को पहचाना। तो कहने का मतलब है, ब्रह्मा बाप समान हमें प्रण करना है। हमारे मुख से कभी भी साधारण बोल या कड़वे बोल, दिल को चुभने वाले बोल कभी भी निकालना नहीं है। ये सीख हमें बाबा के जीवन से सीखनी है। चौथी बात, बाबा की दृष्टि सभी के लिए आत्मिक दृष्टि रहती थी। जब से बाबा को आदि पिता का टाइटल मिला, बाबा की दृष्टि में परिवर्तन हो गया, दिव्यता आने लगी। जब भी बाबा किसी को मिलते थे तो बाबा दृष्टि देते थे, और जैसे दृष्टि देते थे तो सामने वाला व्यक्ति अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता था, और ऐसे अनुभव करता था कि मुझे बाबा की दृष्टि से करंट मिल रहा है, शक्तियां मिल रही हैं। ऐसा अनुभव हर कोई करता था। तो बाबा की दृष्टि इतनी प्रखर थी, बाबा की दृष्टि को एक्सरे विजन कहते थे। भ्रुकुटी के अंदर, मस्तक के अंदर जो आत्मा छिपी हुई है, बाबा को स्पष्ट नजर आती थी। इसलिए बाबा के विजन को एक्सरे विजन कहते थे। तो बाबा की दृष्टि में दिव्यता कहो, रूहानियत की शक्ति कहो, अलौकिकता की शक्ति कहो, दृष्टि से अनुभव होती थी। इसलिए हमारे दृष्टि में भी हमें परिवर्तन लाना है। अगर कोई हमारे सामने आता है, उसको आत्मिक रूप से या फरिश्ता रूप में देखते हैं, तो ये भी पुण्य का काम कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जब आत्मिक दृष्टि से उसको देखते हैं तो उस आत्मा को पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, सुकून मिलता है, और उसके दिल से हमें दुआएं मिलती हैं, ये भी पुण्य का काम है। तो हमारे दृष्टि में हमें इस प्रकार से परिवर्तन जरूर लाना है। पांचवी बात, बाबा क्षमावान थे। जब भी बाबा का बच्चा कोई गलती करके बाबा के सामने जाता था, बाबा उसको क्षमा करते थे और दिल से बिल्कुल खत्म कर देते थे, ताकि उस आत्मा को यह फील नहीं होता था कि मैंने गलती किया इसलिए बाबा नाराज होंगे, ये फीलिंग उसको नहीं होती थी। बाबा कहते थे, बच्चे कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। तो बोझिल होकर बच्चे बाबा के पास आते थे और हल्के बनकर बाबा के पास से वापस जाते थे। तो बाबा क्षमा के सागर थे। बड़े व्यक्ति का दिल बड़ा होता है और बड़े दिल के व्यक्ति के दिल में क्षमा भाव सदा पनपता रहता है। इसलिए कभी किसी की भी कमी हमें नहीं देखनी है, गलती नहीं देखनी है। देखनी है तो हमें अच्छाई ही देखनी है, क्योंकि माया ने हमें चश्मा पहनाया है अवगुणों को देखने का, कमियों को देखने का। उसके कारण हमारे में कमियां बढ़ती गई, हम नीचे गिरते गए। अभी बाबा कहते ये चश्मा फेंक दो, अभी मेरे से चश्मा लो गिफ्ट के रूप में। सदा सबकी विशेषताएं देखने का चश्मा सदा पहनकर रखो और सभी रूहे गुलाब से, आत्माओं रूपी रूहे गुलाब से मधु रूपी विशेषता ग्रहण करते रहो। मधु मक्खी की तरह मधु इकट्ठा करते रहो। तो ये विशेषता हमें बाबा से सीखनी है। कोई भी कोई गलती करता है हमारे से वो रिलेटेड होती है, तो हम उसको लंबे समय तक अपने दिल में रखते हैं और उसके कारण व्यवहार में भी कमी पेशी आती है, व्यवहार बदल जाता है। लेकिन हमें क्षमा करना है और अपने व्यवहार में सुधार लाना है। पांचवी विशेषता, बाबा ज्ञान के स्वरूप बनकर रहते थे। सत्य ज्ञान क्या होता है अगर ये देखना है, तो ब्रह्मा बाबा का जीवन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण था, क्योंकि बाबा ने उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया हुआ था। ज्ञान के वो सागर बन गए थे, स्वरूप भी बन गए थे और आत्माओं के साथ ज्ञान रत्नों की ही खेल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। हर रोज बाबा कहते थे 5 बजे अमृत वेले के बाद 5 बजे बाबा बैठते थे और ज्ञान का मनन चिंतन करते थे और सोचते थे मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सुंदर गरम गरम हलवा बना रहा हूँ। ऐसा सोचकर ज्ञान की गहराई में जाते थे। आपने देखा होगा ज्ञान के मनन चिंतन करने की यादगार भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाबा की और हम बच्चों की बहुत सुंदर है। कौन सी यादगार है? सागर में शेषया पर विष्णु लेटे हुए हैं, टांग पर टांग रखकर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और चेहरे को देख रही हैं, चेहरा बड़ा बदल रहा है, खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा है। तो लक्ष्मी जी हंसी हंसी में कहती हैं, राजन क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो विष्णु जी ने जवाब दिया कि क्या बताऊं लक्ष्मी जी, आज तो मैं गीता ज्ञान के, मनन चिंतन के, गहन चिंतन में मगन हूँ और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। तो ये केवल ब्रह्मा बाबा की यादगार नहीं है, हम बच्चों की भी यादगार है। उनका नाम है विष्णु। उस आत्मा में विकार का विष अंश मात्र भी नहीं था। तो ये ब्रह्मा बाबा की यादगार हैं। हमें भी ज्ञान का मनन चिंतन बहुत अच्छी तरह से करना जरूरी है। हर रोज मुरली सुनने के बाद एकांत में आधा पौना घंटा जरूर बैठना है। उस मुरली के गहन जो पॉइंट्स होते हैं उसकी गहराई में जाने के लिए, क्योंकि बाबा के हर महावाक्य में बहुत गहरा राज छिपा हुआ होता है। उस गहरे राज को समझने के लिए मनन चिंतन करना हमारी हॉबी हो, क्योंकि हरेक पुरुषार्थी के पास दो शक्तियां होना जरूरी है। महसूसता की शक्ति जो हमें ज्ञान के विषय से प्राप्त होती है, दूसरी शक्ति है परिवर्तन शक्ति जो योगाभ्यास से हमें प्राप्त होती है। इसलिए जब भी हम किसी से मिलते हैं तो आज की मुरली में बाबा की लहर क्या थी, बाबा के महावाक्य क्या थे, आज की मुरली का महामंत्र क्या था, ऐसा ही हम चर्चा मिलते समय करते रहें और ये ब्रह्मा बाबा से सीखें, ज्ञान रत्नों से खेलते रहना, तो ज्ञान का स्वरूप हमें बनते जाना है। हमारा मुख ज्ञान नहीं बोले, हमारा चेहरा ज्ञान बोले, क्योंकि बाबा ने कहा है अभी आपको चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी होगी, मुख से सेवा करने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि सुनने वालों के पास आप नहीं पहुंच सकोगे। इसलिए चलन और चेहरे से दूर से ही आपको सेवा करनी होगी। तो उसके लिए हमें ज्ञान को जीवन में धारण करते रहना बहुत जरूरी है। पंडित में और आचार्य में यही अंतर है। पंडित केवल रटी रटाई बातें लोगों को बताता है तोताराम बनकर, लेकिन आचार्य जो होता है वो ज्ञान को पहले आचरण में लाता है, उसके बाद लोगों को बताता है। तो सुनने वाले के दिल पर उसकी अमीट छाप लग जाती है। इसलिए हमें ज्ञान का स्वरूप बनते जाना है। सातवीं विशेषता है ब्रह्मा बाबा की समाने की शक्ति सागर के समान थी। जब भी बाबा किसी की गलती देखते थे, कमी त्रुटि देखते थे, अपने में वो समा लेते थे। जैसी माँ अपने बच्चों की कमी छिपा लेती है, दिल में समा लेती है, इधर उधर वर्णन नहीं करती है, तो ऐसे हमारी ये जो अलौकिक माँ है ब्रह्मा माँ, वो भी हमारी कमी अपने में समा लेती है, इधर उधर उसका वर्णन नहीं करती है। ताली तो बजाओ जरा अच्छी तरह से, बजाओ ना अच्छी तरह से भाई। ऐसी माँ तो आपको सारे कल्प में नहीं मिलने वाली है, इतना प्यार दुलार करने वाली माँ नहीं मिलने वाली है। मिलने वाली है भाई, बोलो हाँ या ना। कितना प्यार, कितना दुलार हमें इस संगम युग में मिलता है जो किसी को भी दुनिया में नहीं मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता है। माताओं का झुंड यहां बैठा हुआ है, माताओं को देखकर बाबा खुशी में झूमते थे। ब्रह्मा बाबा तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो है गुड़गांव से आती थी तो बाबा उनके साथ खगिया मारते थे, डांस करते थे, बहुत अच्छी तरह से उनके पालना देते थे। कितना प्यार ब्रह्मा बाबा बूढ़ी माताओं को भी करता था। भी कितनी माता है आपको बताइए, कितनी माँ है आपको, कितनी माताएं हैं आपको? तीन हैं। हाँ जी, हाँ जी, कितनी है? चार है। देखो गिनती करो, एक माँ ब्रह्मा माँ जिसके मुख से हमारा जन्म हुआ है, दूसरी माँ ब्रह्म जगदम्बा माँ जो अभी भी हमें इनडायरेक्टली पालना दे रही है, तीसरी माँ ड्रा माँ रूपी माँ जब भी तूफान आता है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता है समस्या के समय, ड्रामा रूपी माँ हमें अपने आंचल में छिपा लेती है, चौथी माँ धरती माँ भारत माँ जिसके मिट्टी में ये शरीर इतने सालों से पलता आया है, बिंदु ऊपर से आई 5000 वर्षों तक उसने हमारी पालना की, ऐसी धरती माँ जैसी कोई माँ हमारी नहीं होगी। और फिर दूसरी माँ है परमात्मा, सबसे बड़ी माँ परमात्मा, ये पांचवी माँ हो गई। और छठवी माँ जिसके कोख में ये शरीर की रचना हुई वो लौकिक माँ हमारी। कितना प्यार हमें मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है जो किसी को नहीं मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा कभी भी किसी के कमी का वर्णन इधर उधर नहीं करते थे, क्योंकि कमी का वर्णन करने से वायुमंडल बिगड़ता जाता है। दूसरी बात, आपस में जो प्रेम प्यार का रिलेशन है उसमें दूरी आती है। तीसरी बात, संगठन तितर बितर होता है, टूटने लगता है। इसलिए हमें कमी इधर उधर नहीं किसी को बताना है, गलती किसी को नहीं बताना है, बस बाबा सागर हैं, बाबा के सागर में छोड़ देना है, बता देना है, बात खत्म। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आठवीं बात, बाबा साधना में बहुत तत्पर रहते थे, साधनों को इकट्ठा करने में कभी भी बाबा नहीं रुचि रखते थे, हमेशा उच्च कोटि की साधना में खोए रहते थे। बाबा की कठोर साधना के बल से हम सभी बच्चों को मधुबन में 4 धाम करने का गोल्डन चांस मिलता है, ये ब्रह्मा बाबा की त्याग तपस्या का फल है। बाबा ने मधुबन को तपस्थली बना दिया है, न चाहते हुए मधुबन हम बच्चों को चुंबक की तरह खींचता रहता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहन साधना उस धरनी पर की है। हम 1 घंटे 2 घंटे के योगी होते हैं, एकांत में बैठकर कर्म करते हैं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो योग को किनारे रख देते हैं और कर्म में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा कर्म करते समय भी बाबा की याद में रहते थे, और इसी के कारण बाबा के व्यक्तित्व से हमेशा तपस्या के वाइब्रेशन हर कोई अनुभव करता था। बाबा के नैनों से, चैन से, चेहरे से, व्यक्तित्व से तपस्या के वाइब्रेशन अनुभव होते थे। तो हमें भी इस बात में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। हम इतना सेवा में बिजी हो जाते हैं, इतना दौड़ भाग करते हैं, अगर कोई कहता है घंटा दो घंटा एकांत में बैठकर तपस्या करो तो हमें जैसे कि ये बंधन सा लगता है, कोई पकड़ के हमें बिठा रहा है जबरदस्ती, ऐसा हमें लगता है। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में संतुलन देखा, बाबा बच्चों के साथ मिलनसार थे, बच्चों को बहलाने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए समय निकालते थे, लेकिन उतनी ही रुचि बाबा की एकांत प्रिय बनने में थी। एकांत में बैठकर बहुत गहन साधना में बाबा सदा खोए रहते थे। इसलिए चारों धाम हमें बार बार खींचते हैं। साधन और साधना का बैलेंस रखना, ये हमें बाबा के जीवन से सीखना है। साधनों को साधना का आधार नहीं बनाना है। हम क्या सोचते हैं, ये साधन मिलेगा तो मैं तपस्या करूंगा, योग करने के लिए जाऊंगा या बैठूंगा, तो हम साधनों के आधार पर न रहें। तो ऐसी तपस्या हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। बाद में नवी बात है, बाबा सबको सम्मान देते थे। बाबा हिस्ट्री हॉल में हमारी दादियां छोटी छोटी बच्चियां थी, मुरली जैसी पूरी होती थी, तो बाबा साहब बाहर आते थे और सबको सैल्यूट मारते थे। याद प्यार नमस्ते करते समय सबको सैल्यूट मारते थे, सलाम करते थे। इतना सम्मान बाबा ने बच्चों को दिया, बाप रे बाप रे, कौन इस दुनिया में इतना सम्मान देगा। गुलजार दादी जी बताती थी कि जैसे छोटे बच्चे थे, बाबा रात को 10 बजे सुलाने के पहले हमारे पैरों के तलवे पर तेल की मालिश करते थे। बाप रे बाप रे, तेल की मालिश करते। ये मेरे होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां बच्चे हैं, इसलिए ऊंची उसी ऊंची दृष्टि से बाबा, सम्मान की दृष्टि से बाबा देखते थे। तो हमें भी ये बाबा से सीखना है। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, लिखो, जो देगा मान वही बनेगा महान। महान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन महान बनने के लिए क्या करना होगा? जो देगा मान वही बनेगा महान। मान देने वाले माननीय बनते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते थे, मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। और बाबा ऐसे बच्चों की सेवा भी करते थे, क्योंकि हमें बहुत ऊंची दृष्टि से देखते थे। कई बार हम देखते हैं, किसी की कमी देखते हैं ना, कोई गलती कोई हमें बता देता है, तो हमारी दृष्टि उस आत्मा के प्रति थोड़ी नीची होती है, सम्मान के बजाय थोड़ी नीची होती है। मान देने के लिए हम थोड़ा हिचकते हैं। ब्रह्मा बाबा से हमें सीखना है। कोई बाबा के लिए ऊंचा नीचा बोलता था, ऐसा व्यवहार करता था जो अच्छा नहीं है, और वो बच्चा बाबा के सामने जब मिलने आता था तो तो बाबा उस बच्चे पर प्यार ही बरसाते थे, हमेशा प्यार ही बरसाते थे। क्या राज था उस प्यार बरसाने के पीछे? बहुत गुह्य राज है, ध्यान से सुनना। बाबा कभी भी उस आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखते थे, बाबा उस आत्मा का आदि अनादि स्वरूप देखते थे, अंतिम स्वरूप देखते थे। जब आत्मा ये धरती पर आई थी सतोपदान थी, आदि काल में भी सतोपदान थी और अंत में भी सतोपदान बनकर संपूर्ण बनकर घर जाएगी, तो बाबा ऐसे वर्तमान को नहीं देखते थे, आदि अनादि स्वरूप को देखते थे और सब पर प्यार बसाते थे, क्योंकि हर एक में कमी है। इस संसार में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। हमें कमी को नहीं देखना है, क्योंकि ऐसी एक भी आत्मा इस संसार में नहीं है जिसमें अच्छाई नहीं है, विशेषता नहीं है। हर एक में विशेषता है, चाहे वो ज्ञानी है हो या अज्ञानी हो, सबको हमें सम्मान की दृष्टि से देखना है। भाई आखिर तो मनुष्य का जन्म तो मिला है, कुछ तो उसके अच्छे कर्म हैं, नहीं तो वो कीड़े माकोड़े के योनि में जाता। इसलिए हमें हरेक को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखना है। प्रकाश मणि दादी जी को मैंने देखा, 30 वर्षों तक उनके अंग संग मधुबन में रहा, उनके जीवन से बहुत बातें मैंने सीखी। दादी का एक ही महामंत्र था, छोटों को प्यार और समान वाले और बड़ों को सत्कार। इस धारणा से दादी कहां से कहां पहुंच गई, सारे वर्ल्ड की लीडर बन गई थी दादी, सारे वर्ल्ड के इसी धारणा से। छोटों को प्यार, समान वाले और बड़ों को सत्कार। हम बड़ों को सत्कार देते हैं, छोटों को भी प्यार देते हैं, लेकिन जो समान वाले होते हैं उनको सम्मान देने के लिए हिचकते हैं, थोड़ा कतराते हैं। अरे भाई दो ना, दिल खोल के दो ना, जेब से कुछ पैसा आपको नहीं देना पड़ता है, केवल दिल बड़ा रखना होता है और उस आत्मा के प्रति सम्मान की भावना रखनी होती है। इसलिए बाबा से हमें ये सीखना है। 10वीं विशेषता, बाबा के दिल में हर आत्मा के प्रति स्नेह और सहृदयता पनपती थी। बाबा शिव बाबा प्यार के सागर थे, ब्रह्मा बाबा भी प्यार के सागर बन चुके थे। कोई बच्चा या बच्ची बाबा को मिलती थी, हर कोई अनुभव बताता था कि बाबा मुझसे ही सबसे जास्ती प्यार करते हैं, मुझसे ही सबसे जास्ती प्यार करते हैं। क्यों हर बच्चे के मुख से ऐसा निकलता था? क्योंकि स्नेह के सागर, प्यार के सागर प्यार लुटाते थे और सबको प्यार से भरपूर करते थे। उनका मन हमेशा स्नेह से पल्लवित रहता था और सबके प्रति स्नेह की भावना सदा रहती थी। उनका प्यार देहिक प्यार नहीं था, आत्मिक प्यार था, रूहानी प्यार था, निश्चल प्यार था, निस्वार्थ प्यार था, निर्मोही प्यार था। बाबा के प्यार की पालना से कितनी आत्माएं यज्ञ में शिव बाबा पर कुर्बान हो गई, ये बाबा के प्यार का रिजल्ट था। बाबा के रूहानी प्यार ने कितनी आत्माओं ने मोह जैसी, ममता जैसी कमी का त्याग दिया, जीत लिया और मोहजीत बन गए, विकारों को जीत लिया। तो ये था बाबा का प्यार। अभी देखो बाबा की विशेषताओं का तो इतना वर्णन हम कर सकते हैं, घंटों घंटों क्या दिन रात कितने उसमें जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात है उनको फॉलो करना, उनकी अच्छाइयों को जीवन में लाना। वो कैसे होगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो बाबा के गुणों को, शक्तियों को, विशेषताओं को धारण करने के लिए दो प्रकार की शक्तियां हमारे पास होनी चाहिए, महसूसता की शक्ति और परिवर्तन शक्ति। कमी की भी महसूसता हो, अच्छाई की भी महसूसता हो। चेहरे को जब हम मेकअप करते हैं तो पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ करते हैं, फिर उसको मेकअप करते हैं। तो इससे आत्मा को भी अच्छी तरह से हमें साफ करना है, दाग जो आत्मा पर है उसको साफ कर देना है। उसके लिए आवश्यकता है महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन पावर को बढ़ाने की शक्ति। क्योंकि हम कई सालों तक चलते हैं इस ज्ञान मार्ग में, लेकिन हमारी कमियां हमें महसूस कोई कोई नहीं होती हैं, कोई बताता भी हमें है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जब स्वीकार करते हैं तब उसको परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। परिवर्तन शक्ति योग के सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कोई ऐसी आदत होती है, कोई संस्कार होता है, कोई ऐसी हैबिट होती है, उसको हम परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसको परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है, मेरा योग शक्तिशाली नहीं है। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है, मीठे बच्चे वर्तमान समय के पुकार हैं, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाना, शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना। क्योंकि साधारण योगाभ्यास से हमारे पुराने जो संस्कार हैं वो गर्म भी होते हैं, नरम भी होते हैं, लेकिन पिघलते नहीं हैं, मेल्ट नहीं होते हैं। वो मेल्ट होने के लिए आवश्यकता है ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। जनवरी मास में आप यहाँ पहुँचे हैं, आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, बहुत भाग्यशाली आत्माएं। जनवरी मास में तपस्या करने के लिए मधुबन में पहुँचना साकार रूप में, ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। जनवरी मास क्या कहता है? जनवरी है, जाना छोड़ो वरी, अभी एक ही वरी रखना है, मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है, बाबा को पूरा खालो करना है। अभी दूसरी युक्ति, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए दूसरी युक्ति है, हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं या सफर में निकलते हैं लंबे सफर पर, अपने साथ में एक चीज लेना नहीं भूलते हैं, छोटा आईना अपने पर्स में जरूर रखते हैं, और जब मौका मिलता है हम अपना चेहरा जरूर देखते हैं और उसको मेकअप करते हैं। तो अभी हम इस रूहानी सफर पर हैं, तो बाबा ने हम सभी सजनियों को सुंदर आईना दिया है, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप रूपी आईना हमें दिया है, उस मिरर में हमें चेहरा आत्मा का देखना है, आत्मा की स्थिति रूपी चेहरे को देखते रहना है, और उसमें कोई कमी पेशी है, एरर होती है, उसको हटाते जाना है। ब्रह्मा बाबा कैसे हैं, मैं आत्मा कैसी हूँ, बाबा कैसे हैं, मैं आत्मा कैसी हूँ, तो बार बार देखते रहने से कमियां निकलती जाएगी और अच्छाइयां जीवन में धारण होती जाएगी और हम ब्रह्मा बाप समान बनते जाएंगे। इसलिए इस आईने में हमें बार बार अपना स्थिति रूपी चेहरा देखते रहना है। तीसरी युक्ति ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए, आप मधुबन में पहुंचे हुए हैं, एक युक्ति को प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ऐसा अनुभव करेंगे, ऐसी सुंदर अनुभूति आपको होगी जो आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाओगे। क्या युक्ति है? आप बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारी बच्ची हो। जो प्यारे बच्चे होते हैं ना, बाप उनको अकेला नहीं छोड़ता है, उनके पीछे पीछे छाड़ो करके छाया की तरह पीछे पीछे जाता है, उसका ध्यान रखता है। तो ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता स्वरूप में मेरे पीछे पीछे आते हैं, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ रहते हैं, और उनके संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकाश मिल रहा है, और सकाश मिलने से फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए मदद मिल रही है। बहुत प्रैक्टिकल युक्ति है, आप इसका अनुभव करो, बहुत मजा आपको आएगा। मुझे याद है मधुबन में 1200 विदेशी आए थे बाबा से मिलने के लिए, लेकिन गुलजार दादी जी की तबीयत ठीक न होने के कारण बाबा नहीं आए, तो वो थोड़े से मायूस हो गए। लेकिन जानकी दादी जी ने क्लास में एक बात उनको बताई कि आप संपूर्ण ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता स्वरूप में अपने अंग संग अनुभव करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हमेशा बाप दादा का फरिश्ता स्वरूप में कंपनी के रूप में अनुभव करो। उन्होंने वो बहुत अच्छा अभ्यास किया, तो जब बच्चे जाते थे मधुबन से बाहर अपना अनुभव सुनाते थे, इतना खुशी में झूमते थे, हरे कहता था बाबा को हम नहीं मिले ऐसा हमें महसूस नहीं होता है, बाबा को हमने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया, बाबा के साथ बहुत अच्छे एंजॉय किए, बहुत सुंदर बाबा के साथ हमने अपनी लीलाएं अनुभव की, सब हरेक उछलता था। तो कहने का मतलब है ब्रह्मा बाप समान हमें कंपनी उनकी अनुभव करते जाना है, तो बहुत अच्छी तरह से हमें सफलता मिलती जाएगी।
मुक्ति धाम तुम्हें
शांति। वो गीत निकालना लता का, वो बाबा आपने इतना प्यार किया। अभी हम बहुत सुंदर योग का अनुभव करने जा रहे हैं। अभी शुरुआत आपकी अच्छी होगी तो 4-5 दिन आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, इसलिए ये टाइम थोड़ा सुस्ती का है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सभी खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करेंगे गीत पर। अभी चुस्त होके मस्त होके बैठेंगे, बिल्कुल आधा घंटे के लिए हम यहाँ से गायब हो जाएंगे, बिल्कुल प्यारे बाबा के पास बैठ जाएंगे। सभी बैठेंगे, जल्दी बैठो, सभी आराम से बैठो, बहुत सुंदर योग की अनुभूति हम कराएंगे आपको। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भृग कोटि के मध्य आंखों पे खिड़कियों के पास विराजमान हो। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज मोज आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं शिव बाप समान निराकारी स्थिति में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। सारा संसार जिसका गायन करता है वो भगवान स्वयं मेरे भाग्य का गीत मुरली में हर रोज गाते ही रहते हैं। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। इस शरीर तो मेरा केवल वस्त्र है, मेरा वाहन है, मेरा मकान है, मेरी कुटिया है, मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकल चुकी हूँ। इस विश्व के गोले से चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मोज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो, इस जनवरी मास में विशेष पालना देने के लिए फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके ब्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा, बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूं। बाबा की दृष्टि से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। मेरे सिकलदे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद बिछड़ा हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आपका सदा स्वागत है। जब भी चाहो, जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। लाडले बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो। मेरी अंगुली पकड़कर चलो, मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। मेरे नूरे रतन बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सर्वशक्तिवान निराकार भगवान मुझे साकार में आकर पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर ब्रह्मा तन द्वारा मुरली के माध्यम से मधुर शिक्षाओं से मुझे सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। सचमुच मुझे अपने टीचर पर नाज है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मेरा वरद हस्त सदा अपने मस्तक पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। मैंने दिए हुए महामंत्र मन मना भव का अच्छा पा जाप करते रहो, वरदानी मूरत बनते रहो। मेरे दिल तख्त नसीन बच्चे, कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठकर अपने दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करो। मेरे साथ खाओ, मेरे साथ खेलो। मेरे साथ रास रचाओ। सचमुच मैं कितनी नसीब वाली आत्मा हूँ, नसीबवान हूँ जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। जनवरी मास में वरदानों के सागर से अनेक वरदान प्राप्त कर रही हूं। वरदानों के सागर बाप मुझ पर वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच चुके हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, मेरा शांति धाम, मेरा स्वीट साइलेंस हो। ओहो मेरे प्राणों से भी प्यारे, मेरे प्राण रक्षक, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से निराकारी शिव बाप की सुंदर छवि को देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। सुंदरता के सागर शिव पिता को जी भर के देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। इस आकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्ति शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है, निरंतर होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य श्री पिता से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरी जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइटर को सी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन का आनंद लूट रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुश नौमे पल है यह, जब मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं, उनकी कंपनी का आनंद लूट रही हूं। इस जनवरी मास में दिल कहता है ऐसी सुंदर अनुभूति में सदा मैं आत्मा खोई रहूं, समाई रहूं, लीन होकर रहूं। वारे में वाह मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, शक्तियों की सकाश ज्ञान सूर्य शिव पिता से मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से शक्तियों की सकाश सारे विश्व की आत्माओं पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं सुकून अनुभव कर रही है, रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही है। भाग्य विधाता से मैं भाग्यशाली आत्मा भाग्य लूट रही हूं और लुटा रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हूं। शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति। ओम शांति।